बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट और मेरा नाम है वकास मीर। और आज हमारे साथ एक बार फिर हैं हमारे मौजूद मेहमान इमाम सलीम अलवी साहब, जो कि इमाम हैं ICC नॉर्वे मस्जिद के, इस्लामिक कल्चर सेंटर के। एक हमारी सीरीज़ इनके साथ हमने शुरू की थी सोशल इश्यूज़ के ऊपर, और आज उसी की एक किस्त आपके सामने हम पेश करेंगे। तो मैं उनको एक बार फिर वेलकम करता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ, और फिर हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह
वालेकुम
वबरकात।
अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकास भी ठीक है, खैरियत से? बहुत
अलहमदुलिल्लाह।
शुक्रिया, आपने फैमिली इश्यूज़ पे हमने पहले सीरीज शुरू की थी, उसी पे आज फिर सामीन से मुखातिब होने का मौका दिया है। अल्लाह ताला हम सब के माशरती मसाइल उनको कुरान सुन्नत की रोशनी में हल करने की हमें तौफीक अता फरमाए।
आमीन सुबह। तो आप अभी जो आज का हमारा जो एपिसोड होगा, उसके कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि आप प्रेजेंट करना चाहते हैं हमारे लिसनर्स के लिए? कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आप देख रहे हैं, जो कि जिसकी ज़रूरत है हमें सुनने की?
वकास भी, इस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इस वक्त जो हमारे सोशल इश्यूज़ में जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उनकी जो है वो चीज़ें जा रही हैं। स्पेशली जो तलाक का रेशो है वो बहुत ऊपर जा चुका है। ये नॉर्वे में पिछले दिनों मैं स्टडी कर रहा था कि नॉर्वे में कोई एक साल की रिपोर्ट आई हुई थी कि साल में कोई 23,000 शादियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं, और उनमें जो तलाकें रजिस्टर्ड हुई हैं वो तकरीबन 12,000 के लगभग हैं।
सुभान
यानी आप ये कह सकते हैं कि मोर देन 50% जो है वो तलाकें। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो उस साल में रजिस्टर्ड हुई हैं वही उसी साल में ही वो तलाकें हुई हों,
बिल्कुल।
लेकिन एक जो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आती है। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी हुई, तो मैंने कहा देखते हैं पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। तो पाकिस्तान में पिछले 20 साल में तलाक की रेशो बढ़ी है, और उसमें जो इस वक्त सिचुएशन है कि 40% पे तलाक की रेशो जा चुकी है।
सुभान
तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और उसमें यानी वो कौन सी वजूहात हो सकती हैं या वो कौन से असबाब हो सकते हैं कि जिनकी वजह से नौबत इस पे पहुंचती है कि तलाक पे नौबत पहुंच जाती है। तो उन असबाब पे मैं ये चाहता हूँ कि मैं समीन से आज बात करूँ कि वो कौन कौन सी रीज़न्स हैं, वो कौन कौन से असबाब
सही।
हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, और ये तकरीबन हमें ना रोज़ाना की बुनियाद पे तलाक के रेलिवेंट यहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं। पाकिस्तान से भी दोस्त अहबाब वो कॉल करते रहते हैं, इस पे बात होती है। पहली चीज़ तो ये है, हमें ये समझना चाहिए कि तलाक है क्या चीज़। तलाक है हलाल, ये हराम नहीं है कोई, लेकिन तलाक ये आखिरी हल है। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि हमने तलाक को पहला हल समझा हुआ है। यानी कौन से जगह है या कौन सी फैमिली है कि जहाँ पे मसाइल नहीं होते हैं? हर घर के अंदर ऊंच नीच होती है, ज़िंदगी जो है वो अप एंड डाउन का नाम है। लेकिन
सही
उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो अगर सब्र व तहम्मुल को अपनाया जाए और कुरान और सुन्नत से गाइडलाइन ली जाए, तो फिर उन चीज़ों को एड्रेस भी किया जा सकता है और उनको टैकल डाउन भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ये ना करें तो फिर मसाइल बढ़ते हैं। पहली चीज़ तो जो मैंने देखी है कि यानी अन अवेयरनेस है तलाक के हवाले से कि तलाक हमने देनी क्या है। यानी मियाँ बीवी के रिश्ते में आमतौर पर होता है कि अगर थोड़ा सा ना उसमें अपना रिएक्शन उसने दिखाना है, तो रिएक्शन दिखाने के लिए भी वो लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल कर लिया जाता है,
सही बात।
हालांकि लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ पे जो है वो मुत्तफिक नहीं हैं, डिसएग्री हैं, तो आप उसके लिए दूसरा अंदाज़ या दूसरा कोई तरीका इख्तियार कर सकते हैं। उसमें जो हमें इस्लाम ने तरीका बताया है सूरह निसा में, अगर आप देखें तो उसमें मुख्तलिफ प्रोसीजर है। ऐसे नहीं है कि एकदम आपने तलाक दे देनी है। तलाक आखिरी हल है, तलाक पहला हल नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस्लाम में फिर जब तलाक देनी है तो उसका तरीका ये बताया गया है कि यानी एक तलाक दी जाए, और उसके बाद जो है वो इद्दत, और इद्दत के दौरान अगर रुजू करना चाहें दोबारा आप जो है वो रिव्यू कर लें अपने रिलेशन को। अगर आप एग्री हो जाते हैं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई निकाह नए पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप रुजू कर लें, मामला
अच्छा,
ख़त्म
एक तलाक के बाद।
एक तलाक के बाद। फिर दूसरा ये है कि अगर आप स्ट्रांगली ठीक है एक तलाक इद्दत में रुजू भी नहीं करते हैं, ख़त्म हो जाती है इद्दत, अब उसके बाद वो भी मर्द भी आज़ाद है, औरत भी आज़ाद है, फिर साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद कभी दोबारा उनमें रुजू की कैफियत पैदा होती है, तो ये बहरहाल उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो नया निकाह कर लें, नया महर अदा करें और उसके बाद फिर रहना शुरू कर दें। आमतौर पर ये होता है कि बच्चे होते हैं, अब बहुत ज़्यादा ये किसी 90% केसेस ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम जज्बातीत में हमने तलाक दे दी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम क्या करें। तो उसमें बेहतर फिर यही होता है कि पहले तो जो प्रोसीजर है कि पहले ख़ुद पर्सनल उसको कोशिश करें, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करने की, अगर वो नहीं हो रहा तो फिर फैमिली को इन्वॉल्व करें, अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद आखिरी ऑप्शन के तौर पे तलाक है। और उसमें भी फिर यह है कि आप एक तलाक दें, दो या तीन, या वो ये न दें, इकट्ठी सारी न दे दें। फिर हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि तीनों, यानी 3 दफ़ा आप तलाक का लफ्ज़ कहते हैं ना, तो तभी शायद एक तलाक होती है, ये नहीं है। 3 दफ़ा आप कहते हैं तो 3 तलाकें हो जाती हैं,
अच्छा
तो इसलिए एक तलाक ही दी जानी चाहिए, और वो भी आखिरी हल के तौर पे, वो पहले हल के तौर पे नहीं है।
ठीक है
और उससे पहले यानी वो रीजंस, वो असबाब, कि ताकि तलाक तक नौबत ही ना पहुँचे, तो उन असबाब को भी
उनको हल
देखना
करने
चाहिए।
के लिए, क्योंकि मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ वो ये है कि हमने रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शोज़ किए हुए हैं। अब 94 से शोज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ मेहमानों को मैं बुलाता रहा हूँ अपने प्रोग्राम्स में, तो वो इसके ऊपर बहुत हमने बात की है। तो मेरे सोच के मुताबिक मैं अभी तक ये समझाऊँ कि हमारे कल्चर में ये 3 तलाकों का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये ड्रामों से आया है चाहे कहाँ से आया है, लेकिन वो 3 फायर कर देना और उसके बाद जी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया जी, रोका जाता है, मुंह पे हाथ रखे जाते हैं, ना दूसरी ना देना, तीसरी ना देना। तो ये कहाँ से ये पूरे का पूरा सेटअप ये आम हुआ कि लोगों को लगता है जी 3 देनी और अभी देनी और बस फारग, और 3 अगर दे दें तो उसके उसके बाद फिर रुजू का तो कोई चांस नहीं बचता, या फिर कोई आप कर सकते हैं।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में मैंने पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है स्टार्ट में कि अन अवेयरनेस है, तो यानी अन अवेयरनेस में फिर ये चीज़ आ जाती है कि तरीक़ाकार ही पता नहीं होता ना। तो उसमें मैंने पहले भी एक दफ़ा आपके चैनल के थ्रू एक सजेशन दी थी, और वो सजेशन ये थी कि जिस तरह पेरेंटिंग होती है, जब वालदेन पेरेंट्स बनते हैं तो यहाँ पे बाकायदा नॉर्वे के अंदर या डेवलप्ड कंट्री के अंदर वो छोटी छोटी चीज़ें, टिप्स देते हैं कि आप बच्चे को कैसे आपने करना है, कैसे, वो सारी चीज़ें। इसी तरह जब शादी हो तो शादी से पहले मेरे ख्याल से एक जो मैरिज कोर्स होना चाहिए कि जिसमें उन दोनों को, बच्ची बच्चे दोनों को बताया जाए कि ये आपके राइट्स हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और फिर उसके अंदर उन्हें ये चीज़ भी बतानी चाहिए कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसके अंदर आपने उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। ये नहीं है कि आप फ़ौरन ही उसको
फॉरवर्ड कर
वो,
दें।
हमारे यहाँ जो कि मैं यही कहा है कि मिसकंसेप्शन है कि शायद जी उसके अलावा तो और कोई रिएक्शन का, या उसके अलावा और कोई जो है वो सेपरेशन का और कोई हल ही कोई नहीं है।
बिल्कुल
तो उसका हल है, और उसके यानी अगर आप सूरह निसा को पढ़ें, 5वें पारे के स्टार्ट में अल्लाह ताला ने वहाँ पे ये चीज़ जिक्र की है कि अगर यानी एक दूसरे को उस पहले तो समझाने की कोशिश की जाए, अगर समझाने से काम नहीं होता है तो फिर उसके बाद जो है वो बेडरूम चेंज कर लिया जाए। तो ये एक वो फेजेज़ हैं,
ठीक
वो
है
फेजेज़ से होता हुआ फिर उसके बाद फैमिली, उसके बाद इन्वॉल्व करनी है। आजकल बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ यानी चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, इसी तरह आसान रास्ते हैं, हर बंदे के पास मोबाइल है, इधर से जो ही कोई बात हुई है तो फ़ौरन ही
रद्दमल।
वो रिएक्शन भी, और फ़ौरन ही फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया जाता है।
जी
हालांकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं कि जब वो उनकी जज्बात ख़त्म हुए, ठंडे हुए, गुस्सा उतरा, तो उसके बाद अब वो बच्ची भी चाहती है कि वो अपने शौहर के साथ रहे, शौहर भी चाहता है कि मेरी बीवी मेरे पास रहे, ठीक है। लेकिन अब फिर दरमियान में जो थर्ड वॉइसेस होती हैं
दूसरे आ जाते हैं बिल्कुल।
तो वो फिर इन्वॉल्व हो जाती हैं, और फिर उनकी वजह से मसाइल ख़राब होते हैं।
ठीक है
तो इसमें पहली जो चीज़ है जो मैं ये समझता हूँ कि जो पहला रीज़न है, पहला सबब तलाक का है, वो ये है कि वालिदैन जब निकाह करते हैं ना बच्चों के, तो निकाह करते हुए बच्चों की रजामंदी को फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। यानी इमोशनल ब्लैकमेल करके, या जो है वो उन पे प्रेशर डाल के, या जो है वो
ज़बरदस्ती करके
ज़बरदस्ती जिस
बिल्कुल
अंदाज़ में भी, तो उनको करके शादी करवा दी जाती है। और ज़ाहिर बात है कि जब उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स वो फीलिंग्स ही वो नहीं होती हैं और मसाइल पड़ते हैं, फिर वो रिश्ता तोड़ना ज़्यादा आसान होता है
ये
जब
अपनी
जहाँ
बात
पे
है
अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो।
सही।
अभी पिछले दिनों हमारे एक साथी हैं, वो आए मेरे पास, कहने लगे कि उनका बेटा इस तरह एक और उस बच्ची के साथ शादी करना चाहते हैं जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, ये उसका मुल्क ही अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं। तो मैं उसकी उनका शादी वो करना चाहता है लेकिन मैं उसकी अपनी फैमिली में शादी करना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं ना। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप अपने आपका बच्चा जहाँ पे आपको कह रहा है ना, उसकी जहाँ पे विल है, तो आप उसकी शादी वहाँ पे करें। कहते नहीं, जो उनका कल्चर अलग है, ये चीज़ें अलग हैं, फिर आगे चल के इन द लॉन्ग टर्म ये मसाइल होते हैं, ये मसाइल होते हैं। उनका कि इन द लॉन्ग टर्म तो जो मसाइल होंगे होंगे, ठीक है, अगर आप अभी बच्चे पे ज़बरदस्ती करके जहाँ आप चाहते हैं आप उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी करवा देंगे, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा उस रिलेशन को,
बिल्कुल मैम,
फिर वो रिलेशन ख़त्म होगा। तो आपकी सारी चीज़ें, अब वो उसकी अपनी विल है, ख्वाहिश है, दो तरफा उनकी चीज़ें हैं, वो करना चाहता है, आप करवा दें। अगर कामयाब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कामयाब ना हुआ तो कम अज़ कम उसका रिश्ता आपके साथ ख़राब नहीं होगा। ये भी एक वजह है कि
जाहिर सी
वालिदैन
बात।
के और औलाद के दरमियान जो दूरियां हैं, तो उन दूरियों के अंदर एक वजह ये भी है। और दूसरी जो चीज़ मैं ये समझता हूँ, यानी जो एक रीज़न है, एक सबब है कि मतलब यानी उसमें रिस्पेक्ट का अंसर, जो कि हम ये कहते हैं जी फ्रेंकनेस होनी चाहिए मियाँ बीवी में, होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं ना कि उन फ्रेंकनेस के बावजूद भी उसकी कुछ लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब उसमें यानी ये भी होता है कि बीवी अगर वो आगे से ऐसी जबान इस्तेमाल करती है, यानी एग्रेसिव हो जाती है, ये शोहर एग्रेसिव हो के ऐसी बात करता है कि जिसमें जो अदर पार्टी है उसकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करता है, तो ये भी एक वजह होती है कि जो तलाक का सबब बनती है। अच्छा, इसी तरह फिर ये भी एक तीसरी एक रीज़न, मैं ये रीज़न्स बयान कर लूँ फिर उस
हाँ,
पर
बहुत
क्वेश्चनिंग
अच्छा
कर
नहीं,
लेते हैं।
जाहिर सी बात है, बहुत
अच्छा, ये तीसरी एक रीज़न जो मैं ये समझता हूँ वो ये है कि बीवी जब अपने शोहर से कंपटीशन शुरू कर देती है ना, ये कंपटीशन इन अ सेंस के ये जी शोहर कहता है मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कहती है मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, वो कहती है मेरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो वो भी फिर आगे चल के ना वो एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है घर के अंदर, और फिर उसी इन्वायरमेंट में आगे फिर बच्चों को भी अपनी तरफ एक कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये बच्चे भी फिर डिवाइड हो जाते
जाहिर
हैं,
सी बात, माहौल ही ऐसा बना दिया ना
माहौल ऐसा
आपने।
बन जाता है,
बिल्कुल
तो ये मसाइल बढ़ते हैं। फिर इसी तरह एक चीज़ जो है वो शुक्रगुजारी का ना होना। अब बीवी है, वो घर के काम काज करती है या वो अपनी जॉब करती है, इसी तरह शोहर अपनी जॉब करता है, काम काज करता है, अब इसमें ये चाहिए कि वो एक दूसरे के जो है वो शुक्रगुजार हों, थैंकफुल हों। अगर वो थैंकफुल नहीं होंगे एक दूसरे, भी यार आप कभी आराम का टाइम था, मैं अभी रात 10 बजे आया हूँ, आपने मुझे अभी खाना ताज़ा बना के दिया, तो मैं आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इसी तरह वो कहती है कि जी आप एक दूसरे के साथ तोहफे दें, तहफ़ दें, वो ये नहीं होगा। तो अब शोर आता है थका हारा, वो अपना बीवी अपने अपने वो अपने अपने फिर होता है कि अपने सर्कल के अंदर वो बंद होते चले जाते हैं, और उसमें फिर ये होता है कि रिश्तों के अंदर जो है वो कोल्डनेस पैदा होना शुरू हो जाती
खटास
है
आ जाती है
जी।
ना हर
अच्छा,
चीज़ में।
वो
बिल्कुल
ठंडे, वो जज्बात ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो होते होते उसका जो नतीजा है वो एट द एंड
बिल्कुल
उसी तरफ चला जाता है।
बिल्कुल सही।
अच्छा, इसी तरह इसमें एक चीज़ जो हम ये समझते हैं कि वो दीन से दूरी भी एक रीज़न है। यानी दीन से दूरी का मतलब क्या है कि यानी अगर ये समझें कि ये मेरा शोहर ये समझे कि मेरी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला ने मुझे ये जो है वो हुक्म दिया है कि मैं अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करूं, बीवी भी ये समझे कि ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं अपने शोहर से उसने सलूक करूं, ये मॉरल इशू नहीं है बल्कि ये रिलीजियस जो है वो इशू भी है कि अल्लाह ताला ने भी मुझे ये बात कही है,
बिल्कुल
क्योंकि
सही।
दोनों के अब जब दीन का शोर होगा, दीन की समझ होगी, तो उसके अंदर फिर जो है वो अपने
आसानी भी होगी दोनों के
आसानी
लिए।
भी होगी और
बिल्कुल
मामलात को बेहतर अंदाज में। फिर इसी तरह टॉलरेंस जो है वो न होना, ये भी एक रीज़न है, जब टॉलरेंस नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती, तो उससे भी मसाइल ख़राब होते हैं। उसमें टॉलरेंस हो, ये भी एक नेचुरल सी बात है कि इंसान अभी कभी थका हुआ है, ठीक है, जॉब की टेंशन है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो
फाइनेंशियल
उसको,
इश्यूज
जो
होते हैं,
फाइनेंशियल
हेल्थ
इश्यूज,
इश्यूज होते
हेल्थ
हैं।
इश्यूज, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इंसान को मुतासर कर रही होती हैं, इंसान की सोच है और वो सारे उसको, तो उसमें अब बीवी को भी ये चाहिए कि वो उसको समझे, शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी, उसके भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, इकोनॉमिकल सारी चीज़ें, तो वो एक दूसरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को समझें और टॉलरेंस के साथ वो चीज़ों को हैंडल करें, तो फिर भी मसाइल इतने ख़राब नहीं होते। अच्छा, इसी तरह एक चीज़ फिर और भी है जो है कि औलाद का ना होना, ये भी एक रीज़न होती है बस अवकात इस रिश्ते में, और उसमें आम तौर पे यानी जो दूसरी पार्टी होती है उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा जाता है कि ये शायद इस वजह से नहीं हो रही और इस वजह से नहीं हो रही। ये देखें, इसमें भी जब हम रिलीजियस एस्पेक्ट में इसको देखते हैं कि अल्लाह का अपना हुक्म है, कि अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटियाँ देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटे बेटियाँ मिक्स करके देता है, और जिसको चाहता है वो बग़ैर औलाद के रखता है।
बिल्कुल
तो ये
बिल्कुल
अल्लाह का अपना फ़ैसला है, ये अल्लाह की अपनी तकसीम है, तो उसमें हम जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका इनकार नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगर नहीं हो रही तो ये अल्लाह का ही का है ना फ़ैसला, अल्लाह का अमर है, तो अल्लाह से मांगना चाहिए,
बेशक
उसके साथ ताल्लुक। तो उसमें एक पार्टी दूसरे को यानी
कसूरवार
ये
ठहराई है,
हाँ
बिल्कुल
उस पर
बिल्कुल
कसूरवार न ठहराए, उस पर इल्ज़ाम न लगाए। इसी तरह फिर इसमें जब ईगो आ जाती है तो ये जो ईगोइज़म है ये भी फिर रिश्तों को बहुत ख़राब करता है, ठीक है, जिसमें अपनी अना फिर वो बचाने के चक्कर में होते हैं और वो रिश्ता कुर्बान कर देते हैं। तो
सही
अना मैं तो अक्सर ये कहता हूँ मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे कि अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते को ना लिबास करार दिया, कि ये एक दूसरे का लिबास है, तो लिबास में फिर ना कोई वो अना नहीं होती है, ठीक है, हमारी बॉडी है उसके ऊपर हमने कपड़े पहने हुए हैं, तो अब बॉडी में उसको सपोर्ट मिल रही है कपड़ों के साथ, सर्दी गर्मी से उसको बचा रहे हैं, उसकी खूबसूरती का ज़रिया है। इसी तरह मियाँ बीवी का जो रिश्ता है एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रोल है, ये ऐसे नहीं है कि वो एक दूसरे के लिए कोई परेशानी का बायस बने और वो एक दूसरे के साथ जो है वो दूसरी कैफियत की तरफ जाए।
बिल्कुल
अच्छा, एक चीज़ और जो एक्सपीरियंस हुआ है और वो एक रीज़न भी है, वो ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता वो तो उनकी तो हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर्ड है सारी चीज़ें, लेकिन उसमें फिर अगली जो चीज़ होती है कि अब बीवी के जो रिलेटिव्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके वालिदैन हैं, उसके भाई हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो अब ज़ाहिर बात है उनके अलग मामलात हैं, इसी तरह शोहर के बहन भाई हैं उनके वो बिल्कुल अलग मामलात हैं। तो उसमें जब इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है कि शोहर अपनी बीवी के बहन भाइयों के मामलों में इन्वॉल्व हो, या बीवी जो है वो शोहर के बहन भाइयों के मामलों में इन्वॉल्व हो, तो ये चीज़ें भी आगे चल के मज़ीद ख़राबी का बायस बनती हैं। अभी 2 दिन पहले एक कॉल आई खातून की, तो इसी चीज़ पे बात हो रही थी, तो अब उसमें उसकी जो बात थी मुझे सुनी और बड़ी हैरानी भी हुई कि अब ठीक है बेटी है, ठीक है बेटा है, लेकिन बेटा और बेटी उनके मामलात हैं, उनके मामलात के हवाले से अगर कोई बात चाहिए तो वालदेन का काम बनता है कि वो उनमें रहनुमाई भी करें, उनको बताएं भी,
सही बात
लेकिन बेटी का आगे जो है वो उसका कोई कज़न है, उसके मामलात हैं, उसके अंदर फिर इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दे शोहर का
ये तो
वालिद की,
काम
जी
खराब हो जाएगा बिल्कुल।
तुम्हारी यानी बहू की जो बहन है वो ये कर रही है, तो बहू
ये
की बहन के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ये इसी तरह दामाद के भाई के साथ उसका कोई रिलेशन ही कोई नहीं है, तो
सही
उनके
बात
मामलों के अंदर इन्वॉल्वमेंट, फिर ये भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो दिलों को मुतनफ़िर करने का और दूर करने का
सबूत
ज़रिया
जी
बनती
बिल्कुल
हैं।
बिल्कुल
तो इसी तरह ये भी जाहिर सी बात है कि जब शोहर बात बात पे वो तलाक की धमकी देगा या डरावा देगा तो वो वाइफ इनसिक्योर अपने आप को फील करेगी, अब जब
सही
वो
बात
इनसिक्योर होगी तो बच्चों की तरबिया कैसे करेगी, उनकी जो है वो केयर कैसे करेगी, लुक आफ्टर कैसे करेगी, तो ये चीज़ें हैं कि जो जब इनसिक्योर सिचुएशन होती है, इनसिक्योर एनवायरनमेंट होता है, तो वो भी एट द एंड जो उस
उसका
रिश्ते के
रिजल्ट सही नहीं निकलता है।
टूटने का ज़रिया बनता है, जुड़ने का ज़रिया नहीं बनता।
बिल्कुल आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए, और ये जाहिर सी बात है अच्छे का मतलब ये कि ये जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आप सुनते रहते हैं लोगों से, इस स्पेस पे कह रहा हूँ मैं। अभी हमारे साथ हमारे मेहमान खसूसी हैं इमाम सलीम अलवी साहब, ICC नॉर्वे के इमाम हैं इस मस्जिद में। तो अभी हमारा एक एपिसोड है सोशल इश्यूज़ के ऊपर, और आज हम बात करें वजूहात तलाक के की वजूहात के ऊपर। एक बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही एक ही तरह से बहुत सैड भी एक टॉपिक है, जो कि आपको बिल्कुल किसी और तरफ ले जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं इर्द गिर्द हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम होती जा रही है। 40% आपने कहा, 100 में से 40 बंदे, इसका मतलब है
अब
जो कि इस चीज़
इसमें
में से
जी
निकल रहे हैं।
ये चीज़ें तो वो है ना, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स वो होती हैं कि जो बाकायदा रिपोर्ट हो
और
जाती
जो
हैं
ना
ना,
हो वो
और
कहाँ
जो
से खाएं।
रिपोर्ट नहीं होते तो वो तो जाहिर सी बात है।
लेकिन आप मुझे ये बताएंगे ज़रा कि आपके पास जो सवाल और लोग लेके आते हैं, जो इश्यूज़ लेके आते हैं, आपको लगता है कि अगर वो पहले आए होते तो शायद उनकी आसानी हो जाती? अभी सुनने वालों में से हज़ारों लोग होंगे और ये काफ़ी लोग सुनेंगे, इसको डाउनलोड भी करेंगे, उनमें से किसी ना किसी के जहन में कोई ना कोई ऐसा सवाल आता रहेगा जो कि आप आज बताएंगे उनको, जो आपके पास लोग लेके आते हैं। कोई ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ज़ाहिर है सब अनोनमस हैं जो भी सुन रहे हैं, अगर उनके भी सवाल आप बता रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ से शायद कोई उनको फ़ायदा हो जाए, दूसरों को भी, और उनको भी आसानी हो जाए।
जी इसमें काफ़ी सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सवाल डेली बेसिस पे आते हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, चूँकि हम काउंसलिंग का भी काम करते हैं, मस्जिद जाहिर सी बात है कि सिर्फ नमाज रोज़े के लिए तो नहीं है
बिल्कुल
या
सही बात
इबादत
है,
के लिए तो नहीं है,
बिल्कुल
मस्जिद एक गाइडलाइन का एक मरकज़ है कि जहाँ से लोगों को शरिया एडवाइजरी दी जाती है, गाइड
बेशक।
किया जाता है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हमें जो इस वक्त एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे यूथ के हवाले से, उसमें पहली चीज़ जो है वो यानी सब्र व तहम्मुल का ना होना है। ठीक है, यानी सब्र व तहम्मुल नहीं होता, इधर से बात हुई नहीं है तो फौरन यानी एक्सट्रीम पे जाके रिएक्शन दिया जाता है।
सही,
हालांकि यानी जब हम बैठते हैं बच्चों, अगर तलाक ना हुई हो या एक आध हुई हो, उनको बैठा के उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो उसके बाद 90% 95% केसेस में ऐसे होता है कि वो अपनी जो है वो रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करके जो है वो अपनी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक कर लेते हैं और तलाक से
अलहमदुलिल्लाह,
बचते हैं।
बहुत
तो
बढ़िया।
हमारी कोशिश यही होती है कि तलाक को जो है वो उसको टालने की कोशिश की जाए, या
फैमिली
उस
जुड़ी रहे ना,
फैमिली जुड़ी
बिल्कुल
रहे और उस
बिल्कुल
कैफियत को बजाए, क्योंकि जाहिर बात है कि जब रिश्ता टूटता है और स्पेशली अगर उनके बच्चे भी हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं वो बच्चे होते हैं।
हमेशा।
और यहाँ पे मुझे 3 साल पहले एक साथी आए और वो कहने लगे कि जी ऐसे अपनी फैमिली इश्यूज़ का जिक्र किया और बहुत सारे मसाइल उन्होंने बताए, और उसके अंदर मैंने उन्हें जब ये समझाया कि नहीं जी तलाक के बारे में आप ना सोचें, वो कहते नहीं मुझे, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की है तो मुझे पेरेंट्स ने कहा है कि ठीक है आप तलाक दे दें, कोई मसला नहीं,
वाह
मैंने
जी
अपने
वाह,
पेरेंट्स से बात कर ली है। कहा आपने पेरेंट्स को जो पिक्चर दिखाई है ना, आपके पेरेंट्स उस बेस पे वो आपको कह रहे हैं, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है।
बिल्कुल
अच्छा, दूसरा ये है कि अब इसमें पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो सिर्फ अब अपने बेटे की बात ना सुने, बहू को भी वो बेटी का स्टेटस दें और बहू की भी बात सुने कि उसकी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या असबाब हैं, यानी क्या। अब जाहिर बात है कि जब आप केस को आप स्टडी करते हैं ना, तो आप उसको सिर्फ एक साइड से देखेंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी,
बिल्कुल
जब तक दूसरे एंगल से आप जो है वो नहीं देखेंगे। तो इसमें आप सिर्फ अपने बेटे की बात ना सुने, ये सिर्फ अपनी बेटी की बात ना सुने बल्कि दामाद की भी बात सुन लें, ये मेरी एडवाइस होती है, वालिदैन को भी होती है, और इस प्लेटफॉर्म से भी मैं ये एडवाइस करूँगा कि दोनों की बातें सुनी जाएं, बेटी कुछ कह रही है तो दामाद का भी पूछ लें, बेटा कुछ कह रहा है तो बहू से भी अलहदा से सिटिंग करके, उनके आमने सामने नहीं अलहदा से, ताकि वो जो है वो आपके साथ खुल के बात कर सके। और इसमें जो फैमिली का रोल होता है वो रोल बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए,
बिल्कुल
उसमें बेटे और दामाद में, बेटी और बहू में फ़र्क नहीं होना चाहिए, उनको एक जैसा स्टेटस आप दें, डे वन से आप स्टेटस दें, ताकि वो बच्ची या बच्चा आपसे बात करते हुए कभी हेजिटेशन फील ना करें या वो अपने आप को इनसिक्योर फील ना करें, बल्कि खुल के जिस तरह वो अपने वालिदैन से बात कर सकते हैं आपसे भी उसी तरह बात कर सकें।
बिल्कुल। लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया ऐसा, जब आपने उनको रेकमेंड किया लड़के को जिसने फ़ोन किया, लड़की को, के पेरेंट्स को बुलाएं, तो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा कि पेरेंट्स को बुलाने में हिचकिचाहट हुई उनको, या फिर उनको लग रहा था कि, आपको लग रहा था कि वो बंधे हुए हैं किसी ऐसी ऐसी डोरी में, बंधे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि वालदान को अंदर ले आए तो काम ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा उनकी बात मान चुका हूँ या मान चुकी हूँ। महसूस हुआ आपको कि वो करना
हमें
चाहते हैं रुजू, लेकिन बात करना चाहते हैं, दोबारा आना चाहते हैं पास, लेकिन इतने ज़्यादा वो उस सिस्टम में फंस चुके हुए हैं उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी हों उनको।
नहीं, असल में ये होता है ना कि जैसे होता है ना कि आपने एक प्लेटफॉर्म तो ख़ुद बनाना होता है ना, ठीक। यानी वालिदैन हैं तो वालिदैन को आप एक नेगेटिव जो है वो फीड करते रहे हैं
जाहिर
करते
सी
रहे हैं,
बात
तो
है,
वो तो ज़ाहिर बात है उनके जहन में एक नेगेटिव इमेज बन चुका है,
हमारी बेटी हमारा बेटा
हमारी
बेचारा।
बेटी हमारा बेटा बेचारा वो ऐसे कर रहा है। तो
जा
उस नेगेटिव इमेज को आपने ही जो है वो पॉजिटिव में चेंज करना है, कि आपको अपने वालिदैन का बेहतर पता है
सही
कि आपने पहले नेगेटिव फीड किया है, अब आप अपने वालिदैन को पॉजिटिव फीड करें और उसमें खुद पॉजिटिव हों। और उसमें वालिदैन भी, जाहिर सी बात है कि जब हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो फिर वालिदैन को भी इन्वॉल्व करते हैं, और वालिदैन को भी इन्वॉल्व करके कोशिश ये होती है, पहले बच्चे बच्ची को समझाया जाता है, फिर वालिदैन को समझाया जाता है, फिर जो है वो उनकी इकट्ठी भी हम सिटिंग करवा के तो उसको उसके सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं कि ताकि मामला हल हों। तो वो जो साथी जिसकी मैं बता रहा था, फिर उसको समझाया, फिर उसके यानी फैमिली को भी समझाया, और फिर उनके मामलात, तो वो तलाक से अल्हम्दुलिल्लाह उनके मामलात हल होने के बजाय आज वो बेहतरीन और
माशाल्लाह
जो वो
अल्हम्दुलिल्लाह।
बड़े खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जिसमें काउंसलिंग आपकी तरफ से तो भरपूर हुई, आपने अल्लाह का नाम लेके कोशिश की, लेकिन मामला इतने बिगड़ चुके थे, उन रीजंस का बताएं कि क्या वजह थी कि मामला इतने बिगड़ चुके थे कि बावजूद इसके कि आप अहादीसें सुनाते रहे उनको, कुरान को बताते रहे कि वो नहीं माने, मामला ख़राब हो गया।
90% केसेस में तो ऐसे होता है कि मामला हल हो जाते हैं
अल्हम्दुलिल्लाह
जी। मैं जाहिर सी बात है कि देखें, कुरान और हदीस की जब हम बात करते हैं तो वो एक पॉजिटिव, उसके मुकाबले में जो रिश्तों को ख़त्म करने वाली बात है तो वो एक नेगेटिव है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का
वही
मुकाबला
बात
तो
है,
रहता है,
बिल्कुल
ठीक है।
बिल्कुल
लेकिन जब आप पॉजिटिव हो के उसमें सपोर्ट भी करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं, तो अल्लाह ताला दिलों को फिरने पे कुदरत रखते हैं
बेशक।
और अल्लाह ताला असबाब भी पैदा करते हैं। जहाँ तक बात है कोई ऐसा केस की जिसके अंदर कोई नाकामी हुई हो, तो मोस्टली ये होता है कि तकरीबन 90% चीज़ें हल होती हैं।
अच्छा
बाकी जहाँ तक 10% की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, असबाब हो सकते हैं कि जिनके अंदर मिस इंटरप्रिटेशन भी चीज़ों की होती है। उसमें फिर ये भी होता है कि यानी कोई जब बात सुनने पे तैयार ही नहीं होता, कि बस वक्त ये भी होता है ना कि अब जाहिर बात है कि अल्लाह ने ना कुरान के अंदर ये बात कही है कि अल्लाह हिदायत उसको देता है कि जो इनाबत रखता है, यानी जो हिदायत का तलबगार होता है अल्लाह उसको हिदायत देते हैं।
सही बात है,
तो जब हिदायत जो बंदा चाहता ही नहीं है, ठीक है, उसको आप हिदायत नहीं दे सकते। जैसे मतलब इसमें तो सीरत से आपको बहुत सारे वाकयात
वो
मिल
ऐसे ही आ जाए
जाए।
बंदा आपसे
जी
मिलने
बिल्कुल।
काउंसलिंग के लिए आ गया लेकिन
तो जब जब तक
रेडी
वो
नहीं है।
रेडी नहीं है, जब तक अपने जहन को आप जो है वो खुला नहीं छोड़ेंगे, जहन में आपने एक राय बनाई हुई है उसके अगेंस्ट, जाहिर सी बात है कि वो आप कोई भी लॉजिक कोई भी कुरान की आयत हदीस सुनाते रहेंगे, लेकिन उसका जहन पहले से बना हुआ है
सही
तो उसको
बात है,
तब्दील नहीं होता है।
बिल्कुल सही बात।
लेकिन उनकी फिर कोशिश ही होती है कि जी हम ताकि ना इमाम से उसको अप्रूव करवा लें कि हमारा ये अमल गलत नहीं है, ठीक है। तो वो उसको एक ऐसे सनद या सर्टिफाई करवाने के लिए वो आते हैं, लेकिन उसमें कोशिश हमारी होती है, और अगर वो अपना जहन खोल के बैठें तो मामलात हल हो
हल
जाते
हो
हैं।
जाते हैं। आप आपके पास जाहिर सी बात है मुख्तलिफ लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं जिन्होंने तलाक दे दी होती है लेकिन दोबारा पूरे का पूरा सिस्टम दोबारा रिन्यू, क्या इसको बकायदा ज़ीरो से शुरू करना
रीबिल्ड
चाहते
करें,
हैं,
रीबिल्ड कह रहे हैं
हाँ
आप जी,
रीबिल्ड कह लें उसको, लेकिन
हमेशा।
तलाक दे दी हुई है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि इसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़ानदान जो है टूट गया हुआ है, मैं इसको टूटना ही कहूँगा, टूट
जी
गया है, लेकिन बाद में उनको थोड़ी सी समझ अब आई है और वो चाहते हैं कि दोबारा इकट्ठे हो जाएं, तो इसमें तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बनती इस्लाम में, या बनती है?
देखें, इस्लाम के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल वाज़े हैं। आप सूरह बकरा को अगर आप पढ़ें तो उसमें अल्लाह ने तलाक के रजई बड़ा वाज़े बताया है कि वो दो दफ़ा है, यानी ऐसी तलाक के जिसके बाद रुजू हो सकता है वो दो दफ़ा है, तीसरी के बाद रुजू कोई नहीं है, रिलेशन ख़त्म हो गया है। अब उसमें
सुभानअल्लाह,
फिर हमारा कोशिश ही होती है कि यार अगर आपने तलाक देनी ही है तो आप एक दें और उसके बाद जो है वो सब्र व तहम्मुल से काम लें, ठीक है। ये कोई नहीं है कि आप तीन दें और वो सारा चीज़, या यहाँ पे नॉर्वेजियन सिस्टम में तो एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि सेपरेशन होती है, उसके बाद शिल्समिस से होती है,
ठीक है
डाइवोर्स उसके बाद होती है। तो वो एक साल का ये वेटिंग पीरियड होता है कि जिसके अंदर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भेजनी होती है, और वो एक साल में बहुत सारी चीज़ें समझ आ
बहुत
जाती हैं।
कुछ हो सकता है, बिल्कुल।
वो जिसे कहते हैं हमारे यहाँ के आटे दाल का भाव पता चल जाता है, तो वो सारी चीज़ें मर्द को भी समझ आ जाती हैं, औरत को भी आ जाती हैं। और उसमें अगर उन्होंने शरी तौर पे एक आध तलाक दे भी दी हो, तो वो बहरहाल शरी हाल उसका मौजूद होता है।
अच्छा
तो एक तलाक दे भी दी है तो उसके बाद ये इद्दत ख़त्म हो गई है। तो नया निकाह, मैंने आपको पहले बताया है कि नया निकाह तो हो सकता है। इसी तरह अगर किसी ने सेपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया है नॉर्वेजियन सिस्टम के तहत, तो वो सेपरेशन सेपरेशन है, वो तलाक नहीं है।
ठीक है
एक तलाक आपको बाद में अप्लाई करनी होती है। तो वो सेपरेशन जस्ट ऐसे है कि जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है कि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो बीवी नाराज़ होकर अपने मेके में चली गई, तो वो अब नाराज़गी 2 महीने भी रह सकती है, 3 महीने भी, साल भी, 6 महीने भी, ठीक है।
सेपरेशन होगी ना नार्वे की वजह
तो
से
वही
ऑलमोस्ट।
वही नार्वे की तरह सेपरेशन है। अब इस दौरान ये होता है कि दोनों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो ये हो जाता है
तो एक
मामला।
बंदे ने एक तलाक दी है और अलहदा हो गए हैं, नॉर्वेजियन सिस्टम के मुताबिक अलहदगी हो चुकी है, तो वो एक तलाक जो है वो बकायदा रिटन देनी पड़नी है उस बंदे को जो कि उन्होंने दी होगी, या फिर उन्होंने 3 दफ़ा बोला होगा अपने मुंह से। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस अवेयरनेस इतनी
जी
कम है कि इसीलिए तो शादियां होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मैं ड्रामे देख के ये तलाक दे रहा हूँ 3 दफ़ा या फिर 3 इकट्ठे फायर कर रहा हूँ।
असल में देखें, तलाक आप वर्बली दें, रिटर्न दें, या जो है वो यानी जो आप
SMS हो गया
या
या कुछ भी हो
SMS कर
गया,
दें, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जिस तरह भी, तलाक तलाक है।
3 दफ़ा ये
जितनी
मस्ट है।
दफ़ा आप लिखेंगे ना, तो उतनी दफ़ा ही
ठीक है
वो होगी, ठीक है। उसमें इंटेंशन नहीं है, अगर आप तलाक का लफ्ज़ बोल रहे हैं ना, फिर उसमें इंटेंशन कोई उसकी वैल्यू नहीं है।
ठीक है, लिखा
लेकिन
होना
अगर
चाहिए बस।
हाँ, लेकिन अगर आप इसमें लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल नहीं करते, आप ये कहते हैं कि जी मेरी तरफ़ से तुम फारिग हो, ठीक है, या जो है वो तुम मेरी बीवी नहीं हो,
ठीक
अगर तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, इसके अंदर आपकी इंटेंशन होती है, ठीक है। आपकी इंटेंशन है तलाक की, तो तलाक होगी, एक तलाक हो जाएगी इसके साथ, ठीक है, और उसके बाद आपका रिलेशन। लेकिन उसके बाद भी बहरहाल आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, दो ऑप्शन मज़ीद आपके पास हैं। आप इद्दत के बाद दोबारा निकाह कर सकते हैं अगर वो एग्री आपस में हो जाते हैं।
लेकिन आपको लगता है कि नॉर्वे में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक सेपरेशन का जो पीरियड है वो एक एक किस्म का अल्लाह ताला की तरफ से एक आसानी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे हमारे दीन में कुछ इस तरह का साल का पीरियड तो कोई नहीं आया ना, पाकिस्तान
नहीं,
में ऐसा है
बिल्कुल
कुछ।
बिल्कुल ऐसे ही, ये एक आसानी वाली बात है। सेपरेशन जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी साल पूरा है, ठीक है, तो मोस्टली होता है महीने दो के बाद ही बहुत सारी चीज़ें
हाल हो जाती हैं।
हल हो जाती हैं, बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। या उसमें असल में ना, ये जितने भी मामला होते हैं इसमें यानी पहली चीज़ ये होती है कि जब बंदा हल चाहता हो ना, फिर हल
तभी
निकलता है,
होगा जाहिर सी
ठीक
बात
है।
है।
लेकिन अगर बंदा हल चाहता नहीं है ना, तो आप ये कहें कि सिस्टम या शरीयत या जो है वो फिक्र जो है वो उसको बाउंड करके तो वो लेके आए, तो ये ऐसे नहीं है।
ऐसे नहीं होगा। लेकिन आप क्योंकि आपके पास काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, वालदेन को आप क्या राय देंगे जो इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको अपनी तरफ से एक बरादराना मशवरा, माओ को भी और जो वालिद हज़रात हैं उनको भी, क्योंकि दोनों की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से घर टूट सकते हैं।
देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैं मशवरा देता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, पहली चीज़ तो ये है कि आप बच्चों की जब शादी करने लगें, तो उसमें बच्चों की जो विल है, बच्चों की जो चॉइस है, बच्चों की जो ख्वाहिश है, बच्चा है बच्ची है, उसको लाजिमन उसकी रिस्पेक्ट करें।
ठीक है
रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि आप उसको अहमियत दें, वैल्यू दें, और उसकी बात सुन के उसके मुताबिक फैसला करें, जो भी फैसला करना है। ये इस वक्त यहाँ का इशू नहीं है, ये जो है वो ग्लोबल इशू है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, यूरोपियन आपके सामने रेफर भी कर सकता हूँ, और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पे वालिदैन ने ज़बरदस्ती की है और उसका नतीजा फिर कुछ अच्छा नहीं निकला है, नतीजे उसके ख़राब निकले, और ये फिर आगे जो उस वक्त ख़राबी होती है रिश्ता बनने के बाद जब वो टूटता है, तो उस ख़राबी के वो सिर्फ़ दो बंदों पे असरात नहीं होते, वो दो फैमिलीज़ पे, और बसा अवकात वो आगे नस्लों तक वो असरात चलते हैं।
बिल्कुल
नस्लों तक असरात चलने का मतलब ये है कि अगर बच्चे भी हो गए हैं इस दौरान में, तो बच्चे तो ज़ाहिर बात है कि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं।
हर चीज़ डिफॉर्म हो जाती है ना,
जी
टोटली उनकी शेप बदल
जी
जाएगी, उनकी पूरी
बिल्कुल
पर्सनालिटी
बिल्कुल
की। तो
पहली
आपकी
पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो रिश्तों में जो है वो बच्चों बच्चों बच्चा है बच्ची है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी उसका जो है पॉइंट ऑफ व्यू लें, उसकी राय लें, उसकी चॉइस को देखें। और बच्चा अगर आपको फ्री हैंड देता है, तो फिर आप अपने बच्चे बच्ची को बेहतर समझते हैं कि उसके रुझान क्या हैं,
सही बात।
किस तरह का रुझान है, उस लिहाज से आप जो है वो उसका लाइफ पार्टनर ढूंढें। दूसरी चीज़ कि आपने जब शादी कर दी है बच्चे की बच्ची की, तो उसके बाद आपका जो रोल है वो रोल एक गाइडलाइन वाला रोल है कि आप उसको गाइडर आप बने, ठीक है, और गाइड करें उसको, ना ये कि और दोनों को ले के चलने वाला आप रोल बनाएं। ये नहीं है कि आप सिर्फ बेटी की रहनुमाई कर रहे हैं या सिर्फ बेटे की रहनुमाई कर रहे हैं, बल्कि आप बेटा हैं तो उसको भी बताएं कि भाई हमारी बहू है, हमारी बेटी है, ठीक है, उसको ये चीज़ें इस तरह आप करें, औरतों की साइकी इस तरह होती है, मर्दों की साइकी इस तरह होती है, आप उन दोनों को समझाएं और चीज़ें जो है वो पॉजिटिव अंदाज में चलती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट को मलहूज़ रखा जाए, यानी बच्चा है उसकी रिस्पेक्ट, बच्ची बच्ची की रिस्पेक्ट, वालिदैन की रिस्पेक्ट, उनकी सिर्फ रिस्पेक्ट में ये नहीं आता कि ज़ाहरी तौर पर रिस्पेक्ट, बल्कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट, उनकी बातों की रिस्पेक्ट, उनकी ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट, उनसे रेलेवेंट जितनी चीज़ें हैं उनकी रिस्पेक्ट, ये
बेशक
भी उसे उसमें आती हैं।
बेशक
और जो चौथी चीज़ है कि वो सब्र तहम्मुल है, ये
सबसे
सब
इम्पोर्टेंट चीज़।
जी सब्र तहम्मुल उनको सिखाया जाए, वालिदैन भी सब्र तहम्मुल से काम लें, चीज़ें जो है वो टाइम लेती हैं, ठीक है, जब ज़रूरी नहीं है कि डे वन से कोई सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं होता कि इधर से आपने इंस्टॉल किया और वो चीज़ें फ़ौरन अपग्रेड हो गई हैं या अपडेट हो गई हैं। बहू है तो उसको भी टाइम लगेगा, दामाद है तो उसको भी टाइम लगेगा,
सही
थोड़ा
बात।
सा आपकी फ़ैमिली में एडजस्ट होने का, या आपको उनकी फ़ैमिली के साथ, हर एक फैमिली के अपने जो है वो एक मखसूस पस मंज़र होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर फैमिली के अंदर, तो उनके अंदर एडजस्ट होने में हर एक को टाइम लगता है।
बिल्कुल, मेरे पास एक सवाल आया था, वो
जी
मैं आखिरी सवाल आपसे कर देता हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में। ये एक अलग टॉपिक बन सकता है, इसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक बकायदा पूरी एक एपिसोड की जाए। आखिरी
ठीक है,
बात जॉइंट फैमिली के ऊपर बताएं, क्या इसकी वजह से आपने देखे हैं आपके पास जो भाई बहन आते हैं इसकी वजह से उनके रिश्ते ख़त्म हुए हैं?
नॉर्वे में चूँकि इस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम को इतना है कोई नहीं,
पाकिस्तान को ले लें।
ये पाकिस्तान को अगर हम ले लें, तो पाकिस्तान में जो मैंने पहले एक लफ्ज़ बोला था अपनी गुफ्तगू में कि थर्ड वॉइस जो तीसरी आवाज़ होती है, तो तीसरी आवाज़ वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही
सबसे ऊंची आवाज़ होती है
जो
वो।
सबसे ऊंची आवाज़ हुई होती है और वो सबको मुतासर करती है। यानी अब आमतौर पे ये होता है कि बेटी की शादी होके यानी बहू को अब घर में लाते हैं, तो अब वो जब घर में बहू आ गई है, ठीक है, अब वो उसने अपने मेके में, ज़ाहिर बात है कि बेटियां बड़ी लाडली होती हैं, ठीक, उनके साथ बड़ी शफकत प्यार मोहब्बत, अब वो जब बेटी रुखसत होके ससुराल में गई है, तो ससुराल में उसको अगर वही प्यार और वही रिस्पेक्ट वही मिले जो उसकी मेके में थी, तो ज़ाहिर बात है वो एडजस्ट होगी, कौन सा
बिल्कुल
कोई ऐसा इशू है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि उसको ना बात बात में क्रिटिकल एनालिसिस शुरू हो जाता है, ठीक, उस क्रिटिकल एनालिसिस की वजह से वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाती है, और डीमोटिवेट होते होते एट द एंड पहले डिमांड क्या होती है कि जी हम अलग होंगे जिस जॉइंट फैमिली में रहना। अब जाहिर बात है कि अगर वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है ना, यानी आप उसको उसके कमरे में ही हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, अच्छा खाने के टाइम पे जी अब ये खाना ऐसे बनाती है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है, ये सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से, तो आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात नौ बैक वक्त आपके हरम में थी, और उन नौ के ही हुजरे अलग थे, यानी नौ के हुजरे अलग होने का मतलब कि नौ की रहायशें अलग अलग थी,
सुभान
अलग अलग रहायशें, उनका अलग किचन, उनके अलग सारी चीज़ें, वो इसी वजह से थी कि ताकि यानी एक औरत को इतना इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो अपनी
अल्लाह।
मर्ज़ी से खा पी सके, अपनी मर्ज़ी से आराम कर सके। तो इसी तरह जब वो बहू आती है, तो उसको भी इतनी स्पेस जब मिले और उसमें उसको अपनी बेटी की तरह भी, ठीक है जब अपनी बेटी है तो सबके साथ भी उसने स्टडी की है, पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आई है, थकी हुई है, तो कोई मसला नहीं है, बाद में खाना खा लेगी, उसको आप स्पेस देते हैं, तो बहू को भी अगर उसी तरह आप स्पेस दें और उसी तरह लेके चलें तो फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है बच्चों के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए। लेकिन अगर आप उसको ना दें या तो वो फिर जॉइंट
रिस्पेक्ट ना दें तो
फैमिली
फिर तो
रिस्पेक्ट
ज़ाहिर
नहीं,
उल्टा हो
वो
जाएगा सारा
फिर वो
कुछ।
मुश्किल हो जाता है।
ज़बरदस्त, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
बहुत शुक्रिया आकाश भी आपका कि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सामीन से मुखातिब होने का मौका दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी लिसनर्स हैं आपको बताते चलें, आप सुन रहे थे उर्दू पॉडकास्ट। हमारे साथ आज के मेहमान थे मौलाना सलीम अलवी साहब, ICC नॉर्वे के इमाम। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में भी आप को इनसे मिलवाएंगे और एक और टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे।